अयांश ने घर जाकर गाड़ी रोकी, गाड़ी से उतरा और आरवी को भी गाड़ी से निकालकर उसका हाथ पकड़ उसे खींचकर अंदर ले गया। छोड़िए मुझे, आरवी चिल्ला रही थी, पर शायद अयांश ने मानो ना सुनने की कसम ही खा रखी हो। जैसे ही अंदर पहुंचे, हॉल में दिनकर जी सोफे पर बैठे थे और राधे व अन्य नौकर जाकर भी वहीं खड़े थे। आरवी को यूं खींचकर लाता देख और आरवी का चिल्लाना सुन दिनकर जी सोफे से उठे और उनकी ओर देखते हुए बोले, अंशु बेटा, ये क्या कर रहे हो? अयांश ने रुककर उनकी ओर देखा। आरवी भी नम आंखों से दिनकर जी की ओर देख रही थी। दिनकर जी कुछ कहते या आरवी कुछ बोल पाती, उससे पहले ही अयांश बोल पड़ा, फिर अगर आज जैसे किसी ने भूल की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम सबको यहाँ काम करने के लिए रखा है, मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए नहीं। इतने सब हो, घर में कोई घर से गायब है, कैसे गायब है कुछ पता नहीं। पर अब नहीं, अगर फिर वही गलती दोहराई गई तो इस घर से ही नहीं, दुनिया से ही नामोनिशान मिटा दूंगा तुम सबका। राधे और नौकरों की ओर अपनी अंगुली से इशारा करते हुए गुस्से से घूरते हुए सबने अपनी नजरें झुका ली। दिनकर जी भी अयांश को इतना गुस्से में देख चुप रहना ही बेहतर समझ रहे थे। तभी आरवी अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, सब कुछ जान से मारने की धमकी देना बंद कीजिए, भागी मैं थी, इन्होंने नहीं भगाया था मुझे, और आप मेरा हाथ छोड़िए। इतना सुनकर अयांश ने आरवी को अपने करीब खींच लिया। आरवी अयांश के सीने से जा लगी। तभी अयांश ने जो आरवी की कलाई पकड़ी थी उसे आरवी के सामने कर अपने हाथ की पकड़ कसते हुए बोला, ये हाथ मेरे हाथ से कभी नहीं छूटेगा। जितना छुड़ाने की कोशिश करोगी उतनी पकड़ मजबूत होगी, जितना छुड़ाकर भागोगी चंद पल बाद वापस मेरे हाथों में अपना हाथ पाओगी। ठीक ऐसे ही, देखो देखो, हाथ की ओर इशारा करते हुए। आरवी ने नम आंखों से अयांश की ओर देखते हुए अपने हाथ की ओर देखा। आरवी अपनी कलाई हिलाने को हुई पर अयांश की पकड़ में थोड़ा सा भी ना हिला पाई। तभी अयांश बोला, चले। मिसेज मेहरा और आरवी को खींचकर ऊपर ले गया। ऊपर जाते ही अपने कमरे के राइट साइड वाले कमरे में चला गया। जाते ही आरवी को बेड की ओर धकेल दिया। आह, आरवी औंधे मुंह बेड पर जा गिरी। अब मेन गेट तो क्या, इस घर की दहलीज भी पार करके दिखाना तुम। इस कमरे से भी बाहर जाने लायक नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। आई होप इस बार मेरी बात तुम हल्के में नहीं लोगी, गॉट इट? इतना कहकर अयांश कमरे से चला गया। जाते जाते दरवाजे को जोर से बंद कर गया, जिसे चौखट से टकराकर वो थोड़ा खुला रह गया। आरवी औंधे मुंह बेड पर पड़ी सिसकियां भरती रहीं। अयांश अपने कमरे में जाने लगा तो देखा नीचे दिनकर जी परेशान से सोफे पर बैठे थे। अयांश रेलिंग पकड़ ऊपर से ही बोला, दादू, आपकी पोता बहू घर आ चुकी है, आप अब चैन से सो सकते हैं, रात काफी हो गई है। राधी, दादू को कमरे में ले जाओ। राधे अयांश की ओर देखते हुए बोला, जी अयांश बाबा, चले मालिक। दिनकर जी अयांश की ओर देखते हुए राधे के साथ अपने कमरे में चले गए। फिर अयांश भी अपने कमरे में चला गया। विनीत का घर। विनीत घर पहुंचा और हैरान परेशान सा जाकर सोफे पर बैठ गया। तभी एक आदमी किचन की ओर से हॉल में आया। आ गए विनीत बेटा? हाँ रामू काका, विनीत ने बिना उनकी ओर देखे जवाब दिया। रामू काका विनीत के पास आकर बोले, आज बड़ी देर कर दी आने में? विनीत ने कहा, कुछ काम था रामू काका। रामू काका बोले, अच्छा, पानी लेकर आता हूँ? विनीत ने कहा, नहीं चाहिए रामू काका। रामू काका बोले, ठीक है, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देता हूँ। नहीं रामू काका, मुझे भूख नहीं है, विनीत ने बिना उनकी ओर देखे जवाब दिया। पर विनीत बेटा, खाना? रामू काका कह रहे थे कि विनीत अपनी आंखें बंद कर पीछे सोफे पर अपना सिर रखते हुए बोल पड़ा, सच में भूख नहीं है काका, आप जाकर सो जाइए, बहुत रात हो गई है। आपको कितनी बार कहा है जब मुझे आने में देरी हो जाए तो आप इंतजार मत किया करो, जाइए आप आराम कीजिए। रामू काका बोले, मैं तो आराम ही करता रहता हूँ, काम ही कितना है, पर तुम्हारे आराम और ख्याल का क्या? आराम कब करते हो कोई पता नहीं, और अब तो ख्याल भी नहीं रखते अच्छे से खुद का। टाइम पर खाना, खाना तो क्या, खाने के लिए भी साफ मना कर देते हो। विनीत वैसे ही सोफे पर लेटे लेटे बोला, कौन से आराम की बात कर रहे हो रामू काका, तन के या मन के? कुछ पल भी लेटूंगा ना तो शरीर को आराम आ जाएगा, मिट जाएगी थकान मेरी, पर मन को तो आराम नहीं आएगा। खैर छोड़िए, आप जाइए और फिक्र मत कीजिए, मैं खा लूंगा थोड़ी देर बाद खाना। रामू काका विनीत की ओर देखते हुए बोले, सब ठीक है ना बेटा, परेशान दिख रहे हो? विनीत आंखें बंद किए हुए ही बोला, सब ठीक है रामू काका, सब ठीक है। रामू काका बोले, ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा विनीत बेटा बहुत समझदार है। बस इतना कहूंगा कि याद है ना दीदी से किया वादा कि हमेशा तुम अपना ख्याल रखोगे। ये सुन विनीत ने अपनी आंखें खोली और नम आंखों से रामू काका की ओर देखते हुए बोला, हम तो निभा लेंगे वादा रामू काका, पर उसका क्या, उसने भी तो किया था मुझसे वादा, हमेशा साथ रहेगी, मेरा ख्याल रखेगी, अपने हाथों से खाना खिलाएगी। मुझे नहीं, उसे कहो, क्यों चली गई उससे पूछो। रामू काका बोले, कहता हूँ ना, रोज कहता हूँ, पर तुम सुनते हो जो, वो सुनेगी, बहन तो तुम्हारी ही है बेटा, तुमसे भी बड़ी वाली जिद्दी। वैसे तुम ही तो कहते हो वो कहीं नहीं गई, यही है इस घर में। विनीत ये सुन घर की ओर देखता है और हंसते हुए कहता है, हाँ यही तो है चुड़ैल, भूतनी कहीं की होगी घर के किसी कोने में, भूतनियां थोड़ी कहीं जाती है, यही भटक रही होगी। रामू काका बोले, विनीत बेटा। विनीत बोला, लो कमाल है, जब वो थी तब भी उसकी साइड और अब भी उसकी साइड। चलो कोई ना, मुझे पता है आपकी वो लाडली थी। अच्छा पक्का मैं खा पी लूंगा, बट थोड़ी देर में खुद ही, प्लीज अब आप जाओ, गुड नाइट। रामू काका ठीक है कहते हैं और विनीत के सिर पर हाथ रख गुड नाइट बोल वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही विनीत अपने घुटनों पर कोहनी टिकाकर अपनी हथेली से अपना चेहरा ढक लेता है और मुंह से फूंकते अपनी हथेली मसलते हुए खुद से कहता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। आप खाना खाने की बात कर रहे हो रामू काका? जब से पुरानी मिल में सक्षम को देखकर आया हूँ मेरी तो भूख प्यास सब मिट गई। जिस सक्षम के छोटी सी खरोच पर अयाश पूरा मुंबई सिर पर उठा लेता था, रातों रात हॉस्पिटल खुलवा लेता था, डॉक्टरों की टीम बुला लेता था, आज खुद ही अयांश उसे इतनी सारी चोट जख्म दे रहा है, फोन करके बार बार उन आदमियों से उसे पिटवा रहा है। सक्षम को छोटी सी तकलीफ होती तो उसका दर्द अयांश को होता था, पर आज उसे खुद दर्द तकलीफ दे रहा है और उफ तक नहीं कर रहा है। ना आरवी का मामला समझ आ रहा है और ना ही ये जान पा रहा हूँ कि उस सक्षम वालिया ने किया क्या है, ऐसा भी क्या कर दिया अयांश के साथ कि अयांश उसे ऐसी सजा दे रहा है। अयांश तो बताएगा नहीं कुछ, मुझे खुद ही पता लगाना होगा। आरवी चतुर्वेदी के चैप्टर से पहले मुझे सक्षम वालिया के धोखे की लिस्ट सर्च करनी होगी, पता तो चले उसके लिए जान देने वाला उसकी जान लेने पर क्यों तुला है। सोचते हुए अयांश शावर लेकर बाथरूम से रूम में आया, अपने ब्लैक नाइट गाउन के लेसेस बांधते हुए आईने के सामने आकर खड़ा हो गया और खुद की आंखों में झांकने लगा। तभी उसको आज का वो पल याद आ गया जब उसने आरवी को थप्पड़ मारा था। अयांश ने अपने राइट हैंड पर नजर डाली जिससे उसने आरवी को मारा था। तभी अयांश ड्रेसिंग के पास वाले ड्रॉअर की ओर गया, उससे कैंडल और लाइटर निकाला, कैंडल जलाकर ड्रॉअर के टेबल पर रखता है और उस कैंडल की लॉ की ओर एक टक देखने लगा। उसे उस वक्त आरवी की वो आह सुनाई पड़ रही थी जब उसने थप्पड़ मारा था, तो वो गाड़ी से जा लगी थी, तब उसके मुंह से निकली थी। तभी अयांश अपने राइट हैंड को उस लॉ की ओर कर देता है, तुमको सजा देना खुद को सजा देने जैसा होगा।
अयांश बिना कोई एक्सप्रेशन चेहरे पर लाए एक टक उस लॉ पर हथेली रखे वहीं खड़ा रहा। वो लॉ अयांश के हाथ को जला रही थी। तभी अचानक अयांश ने जोर से उस कैंडल पर हाथ मार दिया जिससे वो बुझकर नीचे गिर गई। उस कैंडल को अपने पैरों से रौंदकर और अपने जले हाथ की ओर देख मुट्ठी बंद करते हुए खुद से बोला, एक पल की मोहब्बत को हर पल की नफरत पर कभी भारी नहीं पड़ने दूंगा।